विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि देखी है विस्तार से, और अब हम प्रायोगिक लब्धि देख रहे हैं। प्रायोगिक लब्धि में आते ही जीव तो मात्र तत्व विचार ही कर रहा है, और उसके निमित्त से कर्मों में जो कुछ बातें बनती है, यानी जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों जो सत्ता में पड़े हैं, उसमें भी कुछ विशिष्ट बातें बनती है, और जो नया बंध होने वाला है उसमें भी कुछ विशिष्ट बातें बनती है। तो जो पूर्व सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है उनमें क्या होता है, तो उन सभी कर्मों की आयु बिना सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है, और वह अंत टोड़ापोली सागर प्रमाण रह जाती है। ये स्थिति किस विधान से, किस प्रक्रिया से घटती है, तो उसको हमने देखा था कि स्थिति कांड घात के द्वारा अनेक टोड़ापोली सागरों की स्थिति घटकर अंत टोड़ापोली सागर प्रमाण रह जाती है। जिस तरह से ये स्थिति का घटना होता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में अनुभाव का भी घटना होता है। चार चार स्थान वाले जो अप्रशस्त कर्मों के अनुभाव के अनंत स्पर्श पड़े हैं सत्ता में, उनमें से अनुभाव का भी घात होता है, यानी अनुभाव का भी कांडक घात होता है। क्योंकि हमने देखी थी ना, एक एक भाग वाले अनंत अनंत स्पर्श, तो जो लता दारू शय अस्थि और शैल वाले हैं, और नीम कांजीर विष और हलाहल वाले हैं, उनमें अनुभाव का भी कांडक भाग होता है। अनेक तीव्र अनुभाव वाले जो स्पर्धक है, उनका एक छोटे अंतर्मुक्त में घात होकर उसके सभी परमाणुओं का अनुभव घटता है। जैसे हमने निषेकों पर घटाया था, वैसे ही वहां स्पर्धकों पर घटाया। मैंने अनेक निषेकों का एक कांडक होता है, वैसे अनेक स्पर्धकों का एक कांडक होता है, और उनका अनुभव घटकर द्विस्थानगत रह जाता है। ये हुई सत्ता में पड़े हुए कर्मों की बात। जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति घटती है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में अनुभव कांडक घात द्वारा अनुभव घटकर द्विस्थानगत रह जाता है। अनुभव कांडकघात इसी तरह से होता है, यहाँ वहां तुम स्पर्धकों में समझना, यहाँ हमने निषेकों में समझाया। निषेकों में स्थिति कम होती है और स्पर्धकों में अनुभाव कम होता है। वो भी एक अंतर्मूर्त में थोड़े थोड़े परमाणु करके अनेक अनंत जो स्पर्धक है, उतने अनंत स्पर्धकों का अनुभाव भी होकर वो कम स्थिति वाले अनंत में भाग इतने रह जाते। तो हम 97 पेज पर आए थे कि जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा कर्म का स्थिति सत्व घटता है, और अंतर कोड़ापुरी सागर प्रमाण शेष रहता है, उसी प्रकार अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घट कर अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। यह जो कार्य है वो अनुभाग कांडक भाग द्वारा संपन्न होता है। ये बात ख्याल में, हमने पहले ही स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात की चर्चा की थी। पूर्व में सत्ता के अप्रशस्त प्रकृतियों में जितना अनुभाग था उसके अनंत भाग करेंगे तो बहुभाग वाले स्पर्धकों का अनुभाग घटकर एक भाग जितने स्पर्धकों के समान कम अनुभाग होता है। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि तीव्र अनुभाग वाले यानी शैल और अस्थि वाले तथा हलाहल और विष वाले स्पर्धक नष्ट होकर उनके परमाणु मंद अनुभाग वाले दारू और लता वाले तथा कांजी और नींब वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं। मुख्यालय अनुभाग कांडक घात होता है। तीव्र अनुभाग वाले अनेक स्पर्धकों का अर्थात एक अनुभाग कांडक का नाश एक अंतर्मूर्ति में होता है, इसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल यानी मात्र अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होती है। प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग अनंत गुणा बढ़कर चतुस्थानगत होता है, यानी गुड़ खान शर्करा अमृत इस रूप होता है। कौन से कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, नए बनने वाले तो ऐसे बनेंगे, उन पूर्व में जिसका अनुभाग कम था सत्ता में जो प्रशस्त प्रकृतियां पड़ी थी उनका अनुभाग बढ़कर इतना हो जाता है। अन्य कोई नया परिणाम उसने अन्य किया नहीं कि जिसके कारण वो बढ़ रहा है, ये तो तत्व विचार में जुड़ गया है। नया बंधने वाला तो प्रशस्त कर्म बंधेगा ही बंधेगा, पूर्व में तीन पुण्य बांधा था वो पुण्य भी उच्च पुण्य हो जाता है, उसका अनुभव बढ़ जाता है। अकर्षण नहीं, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव बढ़ जाता है, बस इतना ही। अगली समय किसी भक्ति नहीं है उसकी, अपकर्षण तो भी होने के थे। यहाँ प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, उसकी चर्चा है। हाँ, पूर्व में जो कम होगा वो बढ़ेगा, और उसमें भी चतुस्थान भी होगा तो उसमें भी कम अनुभाग वाले हुए, क्योंकि एक एक जो भाग है उसमें अनंत अनंत होते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभाग से उसका अनंत गुना बढ़ता चला जाए, जितने पूर्व में बांधता है बांधा है उससे भी अनंत गुना बढ़ता चला जाता है। अभी अभी नहीं, उसकी बात अभी नहीं, यहाँ संक्रमण की बात नहीं। पूर्व में बंधे हुए और सत्ता में पड़े हुए आयु छोड़कर अन्य सर्व कर्मों की स्थिति इस तरह घटती है। अब ये तो सत्ता में क्या हुआ उसकी बात हुई, अब नए बनने वाले की बात चलेगी। इसी प्रकार अब जो नवीन कर्म बंध होता है वह भी अंत कोड़ापुरी सागर का ही होता है, तो भी स्थिति सत्व के संख्यात में भाग जितना नया स्थिति बंध होता है, यानी जितना भी सत्ता में अंत कोड़ापुरी हो गया, समझो सत्ता में इतना हो गया, तभी नया बंधने वाला उससे भी छोटा बंधेगा और वो भी घटता चला जाएगा। क्रमशः उसकी भी यानी खुद छोटा 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 उसका यानी स्थिति जितनी बनती है वो तो कम स्थिति वाला बंध होते चला जाएगा। यह स्थिति बंध भी क्रमशः घटता जाता है, इसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। अपसरण अर्थात कम होना यानी घटना। अब लब्धिसार ग्रंथ में जो स्थिति बंधापसरण का वर्णन है वह इस प्रकार है। हमने पहले देखा था ना स्थिति बंध काय से होता है, कषाय से, कषाय ने मोहराज वे सब, ये बात हमने देखी थी। कषाय में मिथ्या को अवेद जो कुछ है वो सब लेना, यानी मिथ्या को कषाय को मिलकर यहाँ कषाय कहते हैं, यानी मोहराग देश को सबको मिलकर कषाय नाम दिया है और उस कषाय के कारण यहाँ स्थिति और अनुभव बनते हैं। तो स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, इसलिए मिथ्यात्व और कषायहीन होने से यानी मंद होने से स्थिति बंध घटता है। ये तो जाहिर है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जितना तीव्र कषाय, ये कषाय ने मिथ्या को भी उसमें लेना, मिथ्या को और कषाय जितने तीव्र होंगे उतना बड़ी स्थिति बनेगी और उसमें अनुभव भी अधिक बनेगा। मिथ्या को मंद हुआ, कषाय भी मंद हुए तो अभी स्थिति भी छोटी बनेगी और उसमें अनुभव भी कम बनेगा, क्योंकि स्थिति और अनुभव वो मिथ्या को कषाय के अनुसार बनते हैं। नया बंध कम स्थिति वाला होता है, घटने को अपचरण कहते हैं और स्थितिबंध घटने को स्थितिबंधापचरण कहते हैं। प्रायों के लब्धि में स्थितिबंध क्रमशः घटता जाता है, यानी छोटा तो बनता ही हुए, अभी थोड़े काल के बाद फिर और उसमें घटोती है, फिर और उसमें कटौती होती है, फिर और घटती है, ऐसे वो क्रमशः घटते घटते चला जाता है। जितनी स्थिति कम बंधी अर्थात स्थितिबंध में जितनी घट हुई उतना तो स्थितिबंधापचरण हुआ। मान लो पहले 1000 वर्ष का स्थितिबंध होता था, अब 800 वर्ष होने लगा तो कितना घट गया, 200 वर्ष से घट गया, तो हम कहेंगे स्थितिबंधापचरण कितना हुआ तो 200 वर्ष का हुआ, है ना। और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थितिबंध शेष रहा, यानी 200 को तो 200 का तो अपचरण हुआ और अभी स्थितिबंध कितना रहा, 800 वर्ष का। अब जितना 800 वर्ष का स्थितिबंध होता रहेगा तो अंतर मुहूर्त तक 800 वर्ष का होगा, फिर उसमें और घट गई, फिर मान लो और 200 घटते हैं या 150 घटते, जो कुछ घटता है, फिर जो घट हुआ उसको हम अपचरण कहेंगे। और फिर उतना मान लो 600 वर्ष का लगातार होता है तो वो अंतर मुहूर्त तक 600 वर्ष का ही स्थितिबंध होता रहेगा, फिर और उसमें घट हो जाएगी, फिर जो घटा हुआ है मान लो 500 वर्ष का होता है तो 500 वर्ष का ही स्थितिबंध लगातार एक अंतर मुहूर्त तक होता रहेगा, यानी कटौती होने पर अंतर मुहूर्त तक उतना ही स्थितिबंध होगा, फिर कटौती होगी फिर अंतर मुहूर्त तक उतना ही होगा, फिर कटौती होगी फिर अंतर मुहूर्त तक उतना ही होगा, इस तरह से स्थितिबंध घटता चला जाता है। एक बार स्थितिबंध अपसरण हुआ फिर वो समान स्थितिबंध होगा, फिर अपसरण हुआ फिर समान, फिर अपसरण हुआ फिर समान। अब इसको दृष्टांत देकर समझाए, शास्त्र में ही इसको दृष्टांत दिया है। जैसे पहले 1,00,000 वर्ष का स्थितिबंध होता था उसमें 1,000 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध अपसरण हुआ तो 99,000 वर्ष जितना स्थितिबंध रहा। स्थितिबंधापसरण काल के पहले समय में दूसरे समय में इस तरह अंतर मुहूर्त काल तक इतना ही समान स्थितिबंध होता रहेगा, यानी 99,000। पहले 1,00,000 का अभी 99,000 वर्ष है तो 99,000 का स्थितिबंध पहले दूसरे तीसरे समय में इसे अंतर मुहूर्त तक उतना ही होगा। पश्चात 800 वर्ष प्रमाण दूसरा स्थितिबंधापसरण हुआ तभी नया स्थितिबंध कितना होगा, 99,000 - 800 तो 98,200 वर्ष जितना स्थितिबंध रहा। अंतर मुहूर्त काल तक इतना समान स्थितिबंध होता रहेगा पश्चात तीसरा स्थितिबंधापसरण होगा। दृष्टांत में 1,000 वर्ष 8 वर्ष का काल्पनिक प्रमाण बताया, 800 वर्ष। प्रत्यक्ष में पल्ले के संख्यात्रय भाग प्रमाण स्थितिबंधापसरण होता है, यानी एक एक अंतर मुहूर्त के बाद पल्ले का संख्या का भाग इतना उसमें कटौती हो जाती है, इतना अपसरण हो जाता है। इस प्रकार संख्यात बार यानी हजारों करोड़ों बार, क्योंकि पल्ले का संख्या का भाग, पल्ले का संख्या का भाग, पल्ले का संख्या का भाग, कुछ काल के बाद पल्ले जितना घटा, फिर 2 पल्ले जितना घटा, 10 पल्ले जितना घटा, 10 कोड़ा-कोड़ी पल्ले जितना घटा तो एक सागर की घट हुई, ऐसे 1 सागर 100 सागर 400 सागर 800 सागर तक घट गया। यानी इतनी बार जब स्थितिबंधापसरण हुआ तो 700 से 800 सागर की घट हो गई, बराबर। तो ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों बार स्थितिबंधापसरण होने पर जब पृथक्त्व 100 सागर यानी 700 से 800 सागर जितनी गत होती है, तब पहली बार प्रकृति बंधापतन होता है। यानी जब इतनी बार स्थिति बंधापतन हुआ, तब जाकर कोई एक प्रकृति का बंध विरुद्ध गया, उसको कहते प्रकृति बंधापतन का पहला स्थान हुआ। इसे प्रकृति बंधापतन का प्रथम स्थान कहते हैं। पृथक्त्व का अर्थ यहाँ 7 से 8 करना। पृथक्त्व 100 सागर का है ना, पृथक्त्व ने 7 to 8 और उसके आगे 100 सागर लगाना, तो 700 से 800 सागर जितनी घट होगी तब प्रकृति बंधापतन का एक स्थान हो जाएगा। जिस तरह स्थितिबंध में स्थितिबंध के क्रमशः घटने को स्थिति बंधापतन कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता है, बंध होना रुकता है, उसे प्रकृति बंधापतन कहते हैं। एक एक स्थिति बंधापतन द्वारा पल्ले के संख्या से भाग प्रमाण स्थितिबंध में घट होती है। यानी एक बार स्थिति बंधापतन हुआ तो पहले जितना बंध होता था उससे पल्ले के संख्या का भाग इतना कम होने लगा। ऐसे संख्या 1000 स्थिति बंधापतन होने के पश्चात जब कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट होती है, तब प्रकृति बंधापतन का एक स्थान आता है। अब इसको जरा हम समझेंगे। क्या कहा कि पहले अधिक स्थिति बंद होता था, अधिक यानी अंत कोड़ा कोड़ी और वो भी क्रमशः घटता चला जाता है। तो स्थिति बंधापतन होते 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 जब 700 से 800 सागर इतनी घट हो गई, स्थिति बंद में इतनी कटौती हो गई, तब प्रकृति एक विशिष्ट प्रकृति का बंद रुक गया, उसको कहते हैं प्रकृति बंधापतन का एक स्थान आया। उसमें पहले में पहले नरकायु का बंध रुक गया है ना, फिर दोबारा और 700 से 800 सागर इतना कटौती की, ये स्थिति बंधापतन तो चलता ही रहता है। और 700-800 सागर की घट हुई नए बंधने वाले स्थिति में, तो प्रकृति बंधापतन का दूसरा स्थान हुआ। वहाँ एक तिरंचायु का बंध पहले होता था, वो रुक गया, फिर और 700-800 सागर की स्थिति घट गई, तब जाके प्रकृति बंधापतन का तीसरा स्थान आया, वहाँ मनुष्यायु का बंध भी रुक गया। और 700-800 सागर की स्थिति घट गई, फिर वहाँ प्रकृति बंधापतन का चौथा स्थान आया, वहाँ देवायु का बंध भी रुक गया। ऐसे हरेक स्थान के अंदर 700 से 800 सागरों की कटौती होती चली जाती है, तब जाके प्रकृति बंधापतन का अगला अगला स्थान आता है। ऐसे टोटल प्रकृति बंधापतन के 34 स्थान होते हैं। 34 चारों आयु पहले भी पहले बंधना रुकती है। अब यहाँ प्राय व्य लब्धि से बंधना रुकेगी, करण लब्धि में नहीं बंधेगी और उत्तम सम्यक के काल में भी नहीं बंधेगी। उसमें से सम्यक तो होने पर बाद में उत्तम सम्यक के बाद सम्यक उत्तम सम्यक तो होगा तो नरकायु और तिरंचायु नहीं बंधेगी, परंतु मनुष्यायु देवायु जिस गति में जो योग्य है वो बंधेगी। वे रुक गई, अभी रुक गई है। अभी प्राय के लब्धि में, करण लब्धि में और उपशम सम्यक के काल में चारों आयु में से कोई भी आयु नहीं बंधेगी। विशुद्धि इतनी तीव्रता से बढ़ रही है और ऐसा एक नियम है, अति संकलेश परिणामों में और अति विशुद्ध परिणामों में आयु का बंधन नहीं होता। आयु का बंधन मध्यम परिणामों में होता है,
तीव्र सुख में और तीव्र असुख के साथ मतलब बंध नहीं
करता। आयु का बंधन, आयु का बंधन, अन्य सभी बंधन चालू है। अब यहाँ विशिष्ट प्रकृतियों का बंधन रुकते जा रहा है। अभी कौन कौन से स्टेज पर कौन सी प्रकृति रुकती है, बंधना रुकती है, उसकी हम देखेंगे, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ ऐसे कितने स्थान है, 34, और 34 स्थानों पर मिलकर कुल 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 46 और वो भी कैसे, हाँ 34 का नियम है वो अभव्य जीवों को भी ये होता है। अभव्य जीवों में भी स्थिति कांडक घात, अनुभाव कांडक घात, स्थिति बंधापसरण और ये प्रकृति बंधापसरण के 34 के 34 स्थान हो सकते हैं। आनंद बार, अच्छा आनंद बार तो ये क्या होता है, तो इसमें 34 में मिलकर टोटल 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। अब इन 46 को कैसे गिनना, पहले वो कौन कौन सी है उसको देखेंगे। और ये 46 जो कही है उसको कहते हैं अपुनरुक्त, अपुनरुक्त, अपुनरुक्त ने एक बार उसको लिया तो एक बार गिनना, भले वो 10 बार आवे उसको गिनना एक बार। जैसे हमने बहुत बारी इतनी बड़ी नॉवेल पढ़ी, किसी अंग्रेजी में लिखी हुई, तो उसमें अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं, 26। अंग्रेजी में जो कुछ शब्द रचना होगी वो 26 जो अल्फाबेट्स है उसमें से होने वाली है। ए तो हमने एक बार गिना, वो भले लाखों बार आवे फिर भी उसको गिनना एक बार, इसको कहते हैं अपुनरुक्त अक्षर। वैसे यहाँ हम प्रकृतियों की अभी लिस्ट, लंबी लिस्ट देंगे, परंतु एक बार यानी 4 बार 10 बार भी आवे तो जब एक बार होते तो उसको एक बार ही गिनेंगे, इसको कहते हैं अपुनरुक्त। ये अपुनरुक्त हमने ज्ञान मार्गना में देखा था ना, ये अपने ज्ञान मार्गणी श्रुत ज्ञान के जो भेद है, 12 अंगों की रचना होती है तो उसमें अपुनरुक्त अक्षर कितने होते हैं ऐसी चर्चा थी। क्योंकि अपनी भाषा में स्वर और व्यंजन और वो सारे उसके जो मिलकर 64 होते हैं, परंतु 64 का लेना नहीं है, 64 अपुनरुक्त नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा में जोड़ाक्षर भी होते हैं, 2 का मिलकर, 3 का मिलकर, 4 का मिलकर, ऐसे 64 का मिलकर भी एक जोड़ाक्षर होता है। तो ऐसे एक सिंगल सिंगल रखे तो एक बार गिनना, 2-2 का संयोग होगा, 3-3 का संयोग होगा, 4-4 का संयोग होगा, ऐसे 64 का एक सबका मिलकर एक संयोग होगा, ऐसे सबको एक एक ही बार गिनना है। ऐसे जो अपुनरुक्त अक्षर है वो कितने हैं मालूम है, भूल गए, हाँ ये है 31 में 1 माइनस। 31 किसे कहना, तो हमने देखा था 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65536, जिसको क्या कहते हैं मन्नट्टी, मन्नट्टी के वर्ग को बादल कहते हैं और बादल के वर्ग को 31 कहते हैं। यानी 2 संख्या को आपस में गुना करो, 2×2×2×2×2, 64 बार 2 लिखो और आपस में गुना करो, जो संख्या आएगी उसमें अपुनरुक्त अक्षर है। हमें तो 11 अंग क्या 12 अंग क्या होते उसकी बात मालूम है। और जैसे वो पद, अभी पद कितने हैं, हम तो गाते तो है, यानी सरस्वती पूजन में तो हम कहते पहलो आचार अंग बखानो पद अष्टादश सहस बखानो, यानी 18,000 पद होते हैं। एक एक आचार अंग में 18,000 पद है, तो एक पद में अक्षर कितने हैं डॉक्टर, याद है? हाँ हाँ, 1634,83,07,888 एक एक पद में। और वो पद कैसा मालूम है आपको, जैसे पद किसको कहना, अभी उनके ना नमस् समय सार आया, तो कितने आए वो पूरा छंद में चार जो है ना चार में डिवाइड करना, तो नमस् समय सार आय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभाव भावाय सर्वभावांतर अच्छी दे। अभी हमने एक छंद के चार पार्ट है और एक एक पार्ट में शब्द यानी अक्षर कितने हैं, 8 है, तो 8 अक्षरों का एक पद हुआ, उसको तो प्रमाण पद कहते हैं। और ये जो अंगों की रचना जो हुई ना, तो अंगों की रचना में पद कितना बड़ा होता है, तो एक पद एक एक पद में अपुनरुक्त अक्षर होते हैं 1634,83,07,888 एक पद में। और ऐसे 18,000 पदों का एक अंग होता है, और वो भी पद में अक्षर जो गिने वो अपुनरुक्त है। हो सकता है एक ही अक्षर लाखों बार आवे तो भी एक बार गिनेंगे हम, इसको कहते हैं अपुनरुक्त है ना। तो अभी ऐसा लगता है कि वो ज्ञान मार्गना से यही आता है ठीक है। हाँ हाँ, वो जहाजेरा श्लोक की बात और देखो, एक ज्ञान मार्गना की बात करे ना तो ये तो उसके लिए भी 30 घंटे कम पड़े ऐसी बात। ये जहाजेरा श्लोक की बात वो अलग है, वो प्रकीर्ण गांग प्रकीर्ण गांग बाह्य वगैरह उसमें आते हैं। अब यहाँ अभी अपना विषय चलेगा आगे। तो ये जो प्रकृति बंधापसरण के हमने 34 स्थान देखे है उसमें 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, वो कौन कौन सी है किस स्थान पे उसकी बात अभी हम करेंगे। ये प्राय विरुद्धि में सब होता है, तो इसमें ऐसे कुछ स्थान है कि उसमें एक प्रकृति से ज्यादा नाम है। जैसे पहले स्थान पर एक नरकायु है, दूसरे स्थान पर तीन चाहिए, तीसरे में एक ही है, चौथे में एक ही, पांचवे में तो दो है, नरक गति भी है नरक गत्यानुकूली भी, और छठे स्थान में फिर और भी वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वगैरह चालू हो जाते हैं। तो अभी हम उसको देखेंगे। यहाँ लिखा है नीचे, एक बात और समझ लो, यहाँ 46 प्रकृति का बंधापसरण होता है कहते हैं, तब यह समझना कि ये अपुनरुक्त प्रकृति है, यानी भले वो अपर्याप्त नाम बार बार आया है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, फिर सूक्ष्म ये बादर साधारण वगैरह अपर्याप्त वगैरह है ना, अपर्याप्त 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 बहुत बार आए, हम उसको गिनेंगे एक बार इस तरह, फिर भी उसे एक ही बार गिनना। जैसे अपर्याप्त नाम कर्म का नाम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के साथ अनेक बार आया है परंतु उसे एक ही बार गिनना, और पर्याप्त नाम कर्म संयोग रूप से एकेंद्रिय के साथ भी, एकेंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय पर्याप्त, चतुर्द्रिय पर्याप्त, असंगी पर्याप्त, परंतु संगी पर्याप्त का नाम ही नहीं है क्योंकि उसका बंध रुकता ही नहीं है, तो हम पर्याप्त नाम कर्मों को गिनेंगे ही नहीं है ना। अपर्याप्त का नाम मले 8 बार आया, गिनेंगे एक बार, पर्याप्त का भी नाम आया 6-7 बार, फिर भी संगी पर्याप्त और प्रत्येक ऐसा जो बंध है वो चालू ही रहा, इसलिए पर्याप्त नाम कर्म को हम रुकने वाली प्रकृति में नहीं देंगे, उसको बंधने वाली प्रकृति में रखेंगे, यानी वो 46 में उसका नाम नहीं आएगा, है ना। ये हम इसकी लिस्ट पढ़ेंगे तो ये और ख्याल में आ जाएगा। देखो हम उन 34 स्थानों को क्रमशः देखेंगे तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। अभी जो 1, 2, 3, 4 ये जो संख्या लिखी है वो तो स्थानों के क्रमांक है। हमें ये मालूम है किसी बंधापसरण घटते घटते यानी होते होते जब 700 से 800 सागर की घट होती है तब जाके प्रकृति बंधापसरण का पहला स्थान, फिर दोबारा 700-800 सागर घटेगी दूसरा स्थान। इस तरह से हर दो प्रकृति बंधापसरण के स्थानों के बीच में स्थिति बंध कितना घटता है? 700 से 800 सागर वर्ष। देखो अभी ये उनके नाम गिना रहे हैं। चौथी स्थान अब यहाँ देखिए, पहला स्थान है नरकायु का, दूसरा तिरियंचायु का, तीसरा मनुष्यायु का और चौथा देवायु का। यहाँ चारों ही आयु कर्म का बंध क्रमशः रुक जाता है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर क्षयोक्षम सम्यक्त्व होता है, तब मनुष्यायु और देवायु का बंध पुनश्च प्रारंभ होता है। यहाँ से लेकर उपशम सम्यक्त्व के काल तक इसका बंध भी नहीं होगा। जो आगे जो नाम है वो एक से ज्यादा है, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म में यहाँ तक ही बंधेगा, इसके आगे वो बंधे नहीं होगा। इसको कहते संयोग रूप का। देखो ध्यान आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। अभी छठे स्थान पर अभी प्रकृति बंधापसरण का जो छठा स्थान है वहाँ क्या होगा? सूक्ष्म पर्याप्त और सागर है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन वाला जो बंध होता था वो यहाँ तक के अभी इससे आगे उसको ऐसा बंध नहीं होगा। पहले वो जो सूक्ष्म सागर सूक्ष्म हमने लेकिन नाम कर्म के भेद देखे थे तो ये वाला बंध इसके आगे नहीं होगा। सातवें स्थान पर सूक्ष्म पर्याप्त और प्रत्येक का बंध नहीं होगा, साथ में होना चाहिए। ये संयोग बंधन यहाँ नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ रुक गया, इसलिए उसका संयोग रुकता। तीनों का मिलकर जब बंध होता था ये वाला बंध भी इससे आगे नहीं होगा। आठवें स्थान पर है बादर अपर्याप्त और साधारण, जिसको बादर अपर्याप्त विनोद भी कहेंगे वो वाला बंध नहीं होगा इससे आगे। फिर बादर अपर्याप्त प्रत्येक, फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंघ पंचमी अपर्याप्त और संघी पंचमी अपर्याप्त, यानी इसके आगे अभी अपर्याप्त का बंध होगा नहीं। संघी तक सभी अपर्याप्त नहीं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसके आगे अभी अपर्याप्त कर्म बंधेगा ही नहीं। हाँ, अब उसके आगे पर्याप्त में भी कुछ रुक जाते हैं। अब पर्याप्त के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। पंद्रह स्थान पर सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, फिर सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, फिर बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक। अब ऐसे नियम का बंध यहाँ तक ही है, बादर पर्याप्त प्रत्येक, तो ऐसे भी संबंधित हमारे प्रकृति भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। तो ये एक स्थावर और आतक ये भी यहाँ तक ही पॉसिबल है, इससे आगे उनका बंध भी रुक गया। अब 19वें स्थान पर नीचे एकेंद्रीय से पर्याप्त लेगी ना हमने, अब द्विंद्रीय पर्याप्त, तीनवीय पर्याप्त, चतुरिंद्रीय पर्याप्त, असंघी पंचमी पर्याप्त, इसलिए संघी पंचमी पर्याप्त को नहीं लिया। इसलिए जो यहाँ हम चौथी स्थानों में पर्याप्त को घूमते हैं कॉम्बिनेशन में वो नहीं बंधेगी, परंतु संघी पंचमी के साथ पर्याप्त नाम करना बंधेगा, इसलिए इसका बंध नहीं रुकेगा। यानी ऐसे जीवन को संघी पंचमी का बंध पर्याप्त वाला बंध होते रहेगा, उसकी प्रकृति बंधने से नहीं रुकी है, ख्याल ना। अब 23rd नंबर का सूर्यंश गति, सूर्यंश गत्यानुपूर्वी और उद्योग, यानी सूर्यंश गति का बंध यहीं तक है, इसके आगे सूर्यंश गति का बंध नहीं होगा। नीच गोत्र जो सूर्यंश गति के साथ नीच गोत्र भी बनता है उसका बंध यहीं तक है, इसके आगे नहीं होगा। पृथ्वी तो एक स्थान है, सूर्य गति नरगति का नीच गोत्र होता है। अब पृथ्वी का स्थान जो है अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुष्वर और अनादि, ये अप्रशस्त प्रकृति हमने पहले की गति थी, इसका बंधन यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। सब दूसरे स्थान में खंडक संस्थान और असंप्राप्त प्राप्त का सहन, अभी इसको कैसे याद रखना, तो छठा संस्थान और छठा सहन ये यहीं तक बनेगा। अभी नीचे से पहले तक आए, फिर हम पांचवा बना रुकेगा, फिर चौथा रुकेगा, इस तरह उल्टा है। सत्ताईस स्थान में नपुंसक वेद रुक जाता है, अट्ठाईस में वो वामन संस्थान और शिविर सहन, यानी पांचवा संस्थान और पांचवा सहन, फिर उन्तीसवे में उद्धक संस्थान और अर्जुन आराज सहन, यानी चौथा संस्थान और चौथा सहन। ये शास्त्र में ऐसा नहीं समझाया, चौथा और तीसरा जो है ये तो हाँ ये तो ख्याल में आता है ना, ये संस्थान और कॉमन की कॉम्बिनेशन चल रही है, तो ये छठे वाले की बात चल रही है, पांचवे की चौथे वाले की। तीसरा स्थान है श्री वेद का, इसकी श्वास स्वाति संस्थान और नाराज चरण, ये तीसरा संस्थान है और तीसरा चरण है। बत्तीसवा है निर्ग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज चरण है, जो दूसरा संस्थान और दूसरा चरण है। अभी 33 नंबर का जो स्थान है मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुकूली औदारिक औदारिक अंगों का और वज्र विषम नाराज चरण है, ये पहला चरण है। पहला संस्थान के लिया किसी को प्रश्न हो सकता है, देखो नीचे लिखा यहाँ पहला सहनन तो लिया, परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, मैंने इसका बंध चालू है, क्योंकि कुछ न कुछ गति बन रही कि नहीं बन रही, कभी गतियां रुक गई, कौन सी गति का बंध चाहिए, देव गति का बंधन है ना, अभी मनुष्य गति का 33 नंबर पर रुक गया, तो देव गति का बंधन हो रहा है तो इसके साथ समय चतुर संस्थान बन देगा, परंतु देव गति का साथ सहनन बनता ही नहीं है। देव गति जिसको बन रही है तो वो वैश्विक शरीर का बंधन है और वैश्विक शरीर में सहनन नहीं होता, इसलिए देव गति जो बांधता है इसको संस्थान पहला वाला समुद्र से संस्थान तो बांधेगा, परंतु वो सहनन का बंधन नहीं करेगा, ऐसा है नहीं, नहीं ये बांधने वाले की बात है। मनुष्य जो देवगति बांध रहा है उसको खुद को तो सहनन है, परंतु आगामी काल में उसको देवगति मिलने वाली है, तो जो देवगति बांधता है तो उस समय वो सहनन नाम कर्म नहीं बांध, ये बात अगले वाले की बात है। लोग आगे यहाँ लिखा है, देखो सहनन नाम कर्म तो तिर्यंत गति और मनुष्य गति के साथ ही बनता है, साथ यानी जो जीव मनुष्य गति को बांध रहा है, जो जीव तिर्यंत गति को बांध रहा है वो इसके साथ विशिष्ट सहनन को भी बांधता है। जो जीव नरक गति सॉरी देव गति को बांध रहा है नरक गति को भी ऐसा समझता है, जो जीव देव गति बांध रहा है उसके साथ उसको सहनन नाम कर्म नहीं बन गए, ख्याल है। उनमें एक नियम को छोड़कर अन्य सब चीजों को समझना, यानी एक नियम में भी सहनन नहीं होता, जो एक का नाम कर्म का बांध यानी जाति नाम कर्म बांध रहा है उसको भी उसके साथ यानी उस समय सहनन नाम कर्म सहनन वाला नहीं बन गया। आठवें गुणस्थान तक देवगति का बंध होता है और उसके साथ समय चतुरस्त्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बनता रहता है। अब ये बातें ख्याल में नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं है, विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक जाता है इतना ही हमें इसमें समझना है। जब तक पुस्तक लिखा तीन बार पढ़ा रखी का तभी हमारे अरुण भैया बैठे बैठे हो गए,
उन्होंने बोला अभी आपने पहले दो बार पढ़ाया था तो एक प्रकृति बंधा प्रकरण कुछ समझ में नहीं आया था। हमने बोला हमने पढ़ाया था हमको भी समझ में नहीं आया था। ये अभी ये लिखते समय थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई है, ये भी थोड़ी बहुत हुई है तो कुछ समझ में नहीं आया था, कोई डरने की बात नहीं। अगले अंतिम स्थान देखते हैं, चौथी का स्थान जो है अस्थिर अशुभ असाता वेदी और ये स्मृति और अस्थ। अब जब उत्तम समय से जो काल के बाद जो चौथीवा और चौथीवा जो स्थान वाले जो है ये प्रकृतियां इनका बंधन फिर दोबारा प्रारंभ हो सकते हैं। यानी चौथी के स्थान का बंधन होता है तो वो चौथे गुरु स्थान वाले को होता रहेगा और पांचवे से उसका बंधन रुकता है, और जो चौथी के स्थान पर बताया है इसका बंधन छठे गुरु स्थान तक होता रहेगा और उसके बाद वो बंधन रुकता है। परंतु अभी प्राय से लग्न से लेकर उत्तम समय के काल तक इनका बंधन ही रुक गया। कुछ काल के लिए एक अंतर्मुख काल के लिए इन प्रकृतियों का बंधन रुक गया। तुम कहोगी यानी इस तरह से क्या हुआ, इस चौथी स्थानों में 40 प्रकृतियों का बंधन रुक गया। तुम कहोगी चलो बहुत अच्छी बात बताई, अब हम प्राय से लग्न ही रहेंगे तो हमारे इन प्रकृतियों का बंधन यानी बंधन होना रुक जाएगा और हमारा संवर प्रारंभ होगा। क्योंकि सात तत्व के प्रकरण में हमने सीखा था कि बंध का रुक जाना संवर है, तो ज्यादा समझ नहीं होगा। बेटियों ऐसी भूल कभी मत करना, देखो बेटी ने पूछा या नहीं पूछा कहावत है ना, यहाँ से लेकिन बोले सुनने लगे, यानी बहू को कुछ बातें बतानी है तो बेटी को बेटी समझाई जाती, बेटी को डांटते हैं तो बहू अपने आप समझ जाती। हाँ बहू समझ जाती। तो ऐसी कुछ भूल कभी मत करना, यदि पाप प्रकृति का बंध नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, क्योंकि पुण्य प्रकृति का बंध चल रहा है कुछ पाप प्रकृतियों का बंधन जरूर गया, इसलिए अगर संवर मानोगी तो जब पुण्य प्रकृति के बदले पाप प्रकृति बंधेगी तब पुण्य प्रकृति का भी संवर मानना पड़ेगा, क्योंकि यही हम बोलने लगे हैं कि जब भी प्राप्त करता है तो पुण्य प्रकृति भी उससे नहीं बनती है, तब हमको ऐसा कहना पड़ेगा पुण्य प्रकृति का संवर हो गया। यहाँ तो केवल अघात कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंधन केवल अंतर्मूर्त के लिए रुक गया है, और ऐसे प्रायः लग्न के परिणाम और प्रकृति बंधामकरण से चौथी स्थान से अभवियों में भी पाए जाते हैं। तो क्या तुम मानोगे कि अभव जीवन से भी संवर होता है, क्योंकि प्रायः लग्न तो अभव्य में भी होती है। घाती कर्म को समस्त पाप रूप ही है, वे तो निरंतर बनते ही है, यानी जब तक घाती कर्मों में से कुछ बंध नहीं लग जाएगा तब तक हम उसको संवर नाम भी नहीं देंगे। तो घाती कर्म में भी सबसे बड़ा उसका सरदार मिथ्या जो और अंतान मंदिर का भी बंधन चल रहा है, और कुछ पाप प्रकृतियों में थोड़ा कुछ कम यानी पुण्य प्रकृति बन रही है पाप प्रकृति नहीं बन रही, यानी जो खेल हुआ है वो अघाती नहीं हुआ है, धाती तो सभी वैसे वैसे बन रही है, इसलिए अभी उसको हम संवर नहीं कह सकते। सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म को लिख जाते हैं, पाप और पाप कर्म इसमें क्या अंतर है, हाँ पाप है वो जीव का भाव और पाप कर्म में जड़ कर्म की बात है। तो बड़ा पाप मिथ्यात्व है यानी वो जीव का पाप, और बड़ा पाप कर्म वो भी मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व कर्म की बात है, दर्शन मानने का जो मिथ्यात्व कर्म है उसको पाप कर्म का सबसे बड़ा पाप कर्म, उसका बंध और उदय भी यहाँ चल ही रहा है। तो करण लग्न के अंत समय तक निश्चास अनंतागमन भी करता है, आदि का बंद होता रहता है, क्योंकि वहां तक गुणस्थान पहला है। करण लब्धि वाला जीव नियम से समय को प्राप्त करने वाला है, फिर भी जो करण लब्धि का एक अंतमूर्त काल है उसमें निश्चास का बंद भी और उदय भी कर रहा है। इसलिए ये जो है वहां निश्चास संबंधी और अनंतागमन का बंदर उदय दोनों ही चल रहे हैं। प्रथमोत्तम सन्नत्व के पहले समय से इनका बंद तथा उदय दोनों मिल जाते हैं। इसकी बात कर लिए निश्चात और अनंतानुबन, उदय भी मिटेगा और उनका बंद भी मिटेगा। बच्चे से अलग हो जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है तब कर्म में निश्चातवादी 16 और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। तब की बात है प्रथमोत्तम समित्व के पहले समय से शुरू होगा। अभी तो ये केवल बंधा प्रकरण हुआ है, इसको हम संवर नहीं देंगे। कि जब पहले समय से ही भाव संवर हुआ ना, तो जो जो भाव संवर हुआ तो वहां द्रव्य संवर भी होता है। इनमें से विशिष्ट प्रकृतियों का बंद कभी भी रुका नहीं रहा, ऐसा नहीं कि बीच में चालू हुआ। एक सूक्ष्म शतरंग आदि संबंधी का बंद अभी वो समृद्धि को होने वाला नहीं है, प्राय वृद्धि से रुक गया तो आगे भी रुका ही रहने वाला है। परंतु उसमें एडिशन क्या होगी, निश्चातों का बंद रुकेगा, अनंतानुबंधी का रुकेगा, निश्चान रूप निद्रा निद्रा प्रजला प्रजला का बंद रुकेगा, आगे अनेक बातें बनेंगे। तब जाकर उसको हम कहेंगे अब यहाँ प्रकृति का मेरे बंदगी विकसित नहीं हुई है या वो संवर हो गया। तो ये जो द्रव्य संवर हुआ वो अपने आप हुआ, भाव संवर जीव की पर्याय, द्रव्य संवर कर्म की पर्याय। जीव द्रव्य संवर कर ही नहीं सकता, जीव तो अपने भाव का करता है, पर द्रव्य के भाव का करता यह जीव हो ही नहीं सकता है। तो कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। इसमें शरीर में आत्मा में तो हम पुरुषार्थ के नाम पर क्या ध्यान करना सीखो, तो कैसे बैठना, कहाँ दृष्टि लगाना, कौन सा जप करना, ये सारे इसको हम समझते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वद्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है। तो जीव का पुरुषार्थ कहाँ होगा, जीव द्रव्य के संपूर्ण भागों में है, द्रव्य के बाहर नहीं होता, परद्रव्य में तो होती ही नहीं। ये जो पर्याय है वो परद्रव्य में नहीं होती, स्वद्रव्य की पर्याय स्वद्रव्य में होती है। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं। यह बात ठीक तरह से समझ लो कि इन पहली 4 लब्धि में होने वाले शुभ और शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। वो संवर औपचारिक समृद्धि के काल से शुरू हो जाएगा, नहीं समझना। लेकिन संवर किसे कहते हैं, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं। तो सिद्धि की उत्पत्ति तो वो समित्व के काल में होगी, बराबर। और द्रव्य समझ किसे कहते हैं, तो कर्मों का आना रुक जाना उसको समझ कहेंगे। तो यहाँ विशिष्ट कर्मों का आना अभी बनना रुक गया है, परंतु यहाँ इसको संवर नहीं कहते। तो कब कहेंगे कि जब जीव को यहाँ भाव समय प्रकट हुआ उस समय निश्चात्वा अनंतानुबंधी और उस संबंधी जो प्रकृति उनका बंद रुक गया उसको हम द्रव्य संवर कहेंगे। प्राय जलब्धि में कुछ प्रकृतियों का बंद रुक गया है उसको द्रव्य संवर नहीं कहेंगे। पहले सभी प्रकृतियों के नाम सुन सुनकर बहुत भारी हो गया, अब प्रश्न पूछा था ना कि हम प्राय के लब्धि नहीं रहेंगे तो हमारा विशेष प्रकृति उनका बंद हो जाएगा। तो दूसरी बात, क्या तुम प्राय के लब्धि नहीं रहना चाहती हो या सम्यक सिद्धि प्राप्ति करना चाहती हो? इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांध कर इसका फल कितने काल तक देगी? पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्या को पनपता ही रहेगा, इसके बारे में कब सोचोगी? और एक बात, इन चारों लब्धि का प्रत्येक का काल तथा चारों का मिलकर काल एक अंतर्मूर्ति होता है, अधिक नहीं। एक अंतर्मूर्ति के लिए ही इसका बंध मिल जाता है। कोई कहेगा कि हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए इतने सालों से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कि पहले तो अरे हमारी इतने सालों से चलती है, क्योंकि इसके बारे में कभी ऐसा मेरे विचार ही नहीं किया था ना, तो उसके संबंध में अनेक कुछ न कुछ ऐसे भ्रांतियां चलती रही। जिस भाव में संगी पंचेंगे बना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भाव सोक्षम लब्धि नहीं है, क्योंकि सोक्षम लब्धि से कहते ही है, वो किसे कहते हैं उसकी वजह से हमने बहुत की। परंतु सम्यक्त की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया जब जब होगी तब तक क्षयोग समाधि लब्धि होगी, यानी वो पांचों लब्धि होगी। यानी जिस समय मान लो समय दर्शन होना है उसके एक अंतर्मूर्त पहले में ये चारों लब्धि होगी, होगी एक साथ भी होगी सब एक साथ। इसी प्रक्रिया द्वारा सम्यक ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। योग्यता हुई इसलिए सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है, परंतु जब सम्यक तो होगा तब उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी जिसे सम्यक तो होता है उसको ये पूर्व की पांच लब्धि होती है, परंतु ये लब्धि चार लब्धि हुई इसलिए पांचवी लब्धि हुई और सम्यक हुआ होगा ही ऐसा नहीं। अब हम प्रकृति बंधापसरण और बंध की विक्षिप्ति इनमें जो अंतर है उसे देखेंगे तो तुम्हारे बंधापसरण में संवर होने की कल्पना भी छूट जाए। यानी बंध की विक्षिप्ति ऐसा भी शब्द आता है शास्त्र में, यानी जब जीव मिथ्यात्म से समय को प्राप्त करता है तो विशिष्ट कर्मों का बंध उसका रुक जाता है। कि जिन प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में होता है किसी का दूसरे तक ही होता है, ऊपर नहीं होता है, उसको कहते उन प्रकृतियों की बंध की विक्षिप्ति उस गुणस्थान में हो गई। जैसे मिथ्यात्म नाम का कर्म है उसका बंध पहले गुणस्थान में होता है, दूसरे या ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं होता, तो हम कहेंगे मिथ्यात्व के बंध की विक्षिप्ति पहले में हो गई। अनंतानुबंधी का बंध पहले में भी है दूसरे में भी है, तो हम कहेंगे अनंतानुबंधी की बंध की विक्षिप्ति दूसरे में भी है। उसका अर्थ वो ऊपर तीसरे चौथे आदि किसी भी गुणस्थान में उसका बंध नहीं होता, तब उसको हम कहते हैं बंध की विक्षिप्ति होना। चले प्रकृति बंधापसरण का स्वरूप तो हमने विस्तार से देखा ही है। अभी हमने देखा था प्रकृति बंधापसरण में विशेष इतनी प्रकृतियों का बंध कुछ काल के लिए रुक गया है। विवक्षित गुणस्थान में विवक्षित प्रकृति की बंध की विक्षिप्ति होती है ऐसा जब कहते हैं तब यह समझना कि उस प्रकृति का बंध उस गुणस्थान के अंत समय तक पाया जाता है, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं पाया जाता। जैसे मिथ्यात् प्रकृति की बंध की विक्षिप्ति पहले गुणस्थान में होती है, इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात् प्रकृति पहले गुणस्थान में बनती है, दूसरे या आगे के किसी गुणस्थान में नहीं बनती। इसी तरह पहले गुणस्थान में कुल 16 प्रकृतियों की बंध की विक्षिप्ति होती है। वो कौन सी 16 है उसके आगे चलकर चर्चा करेंगे, इसी पुस्तक में आगे उसकी लिस्ट भी दी है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विक्षिप्ति दूसरे गुणस्थान में होती है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति
दूसरे गुणस्थान के अंत तक ही बनती है, अर्थात पहले और दूसरे गुणस्थान में बनती है, ऊपर के किसी गुणस्थान में नहीं बनती। इस तरह हरेक गुणस्थान की दंड स्थिति निश्चित है, उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहाँ तो हम दोनों में अंतर देख रहे हैं, यानी बंधापकरण क्या है और बंधन स्थिति क्या है, इतना अंतर हम देख रहे हैं। ये प्रकृति बंधापकरण है वो तो प्रायोगिक लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त्व के काल तक होता है, और उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर्मुहूर्त तक रुक जाता है। जब तक समय को प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुणस्थान ही चल रहा है। जिस समय को प्राप्त करके ऊपर के गुणस्थान में पहुँचता है, तभी पूर्व के गुणस्थानों में होने वाले बंदगी निश्चित ही कहेंगे। यहाँ हरेक गुणस्थान के बंदे निश्चित ही निश्चित है, जैसे पहले में 16 है, दूसरे में 25 है, तो जब जीव पहले में से चौथे में जाता है तो 16 प्लस 25 तीसरे गुणस्थान में 0 है, इसलिए 16 प्लस 25 41 प्रकृतियों की दंड की निश्चिति हुई। तो चौथे में जो जाता है उसको इन 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, तो जब तक वो चौथे में है तब तक ये बंधन रुका है। प्रायोगिक लब्धि में हमने देखा था प्रायोगिक लब्धि एक ही अंतर्मुहूर्त तक है, और ये जो बंध रुका था वो एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही रुका था। जब जीव चौथे में चला जाता है, अब चौथे का शोषण समय दृष्टि का काल तो 66 सागर मैक्सिमम होगा, है ना, फिर एक अंतर्मुहूर्त तक तीसरे में आएगा, फिर और 66 सागर रहेगा, तो तीसरे चौथे में 41 प्रकृतियां बंधने वाली ही है। तो इतने काल तक उन 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, ये बंध की विस्तृति है। यानी यदि अगर वो नीचे के गुणस्थान में नहीं आता, जब तक ऊपर के गुणस्थान में है तब तक वो कायम के लिए उसका बंध हट गया, वो बंध नहीं होगा। जब तक ऊपर के गुणस्थानों में है तब तक जो जीव समय को प्राप्त करता है, और अभी कोई मिथ्या समय आएगा नहीं, वैसे समय को प्राप्त करके ऊपर ऊपर के गुणस्थान में होकर मुक्त चला जाए, तो जब तक वो चौथे में है तब तक इन 41 प्रकृतियों का उसको बंध होने वाला ही नहीं, और पांचवें में गया और 10 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा, और छठे में गया और 4 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा, सातवें में गया और 6 का बंध मिट जाएगा, आठवें में गया 1 प्रकृति का और बंध मिट जाएगा, आठवें से नौवें में गया तो आठवें में 36 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा, नौवे से 10 में गया तो वहाँ 5 प्रकृतियों का बंध मिट जाएगा, दसवें से और 11वें में गया तो 16 प्रकृतियों का बंध मिट गया, तो 11वें 12वें में एक एक प्रकृति का बंध होगा, 13वें में भी एक का, साता देवी 14वें में गया कोई बंध है ही नहीं, अभी पूरा बंध मिल गया, है ना। तो ये लब्धि है, बंध में हानि होती जाती है ना, तो ऊपर के गुणस्थानों में जब तक है तब नीचे के गुणस्थानों विशिष्ट प्रकृतियों का बंध होता था, जो कायम के लिए मिल गया तब उनको कहेंगे बंध की विस्तृति। यदि वो जीव फिर से दोबारा पहले या दूसरे गुणस्थान में कहीं नीचे आता है तो दोबारा प्रारंभ होता है वो बंध, पर जब तक वो ऊपर के गुणस्थानों में है तब तक उसकी वो बंध की विस्तृति कहलाएगी। चले, और ये जो बंधापकरण देखा वो प्रायोगिक लब्धि में जो अंतर्मुहूर्त काल तक ही उसका बंध मिल गया, इसलिए उसको विच्छित्ति नहीं कही। यानी कहीं कहीं कहने में भी आता है कि यहाँ विच्छित्ति हुई, फिर भी ये बंधापकरण की बात चल रही है, ऐसा बराबर उसमें से अर्थ निकालना। बंधापकरण अंतर्मुहूर्त के लिए हुआ, और वो तो जब तक ऊपर के गुणस्थानों में वो कायम है, उसका उतना बंध उसका मिल गया है। मिथ्या तो गुणस्थान में जो 117 बंधे जो प्रकृति है उसमें से 41 प्रकृतियों का बंध तो मिल गया है। हेलो, हाँ, तो एक अंतर्मुहूर्त में ऐसे अंतर्मुहूर्त करोड़ों, कितने करोड़ों, लाखों करोड़ों अक्षर होते हैं। हाँ बिल्कुल सर, फिर वो नया बंदा अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा करने लगा ना, अब ये कंटिन्यूटी बाद में नहीं रहेगी, फिर दोबारा ये सब चलेगा, बीच में जो यथायोग जो बंदा करने वो कर लेगा वो, फिर जब तत्व विचार में जुड़ेगा तो फिर स्टेज पर आ जाएगा। ये पहले वाला संदेह अभी यहाँ तक आया छोड़ दिया, पांचवें स्थान पर आया छोड़ दिया, दुकान में जाके आया फिर वो छठे ऐसा नहीं होगा। बेस्ट नमस्कार वन अभी तो समय हो चुका अपना, उससे थोड़ी बात रहेगी वो कल दे देंगे हम। जवानी के ज्ञान से